एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में या ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम सब अपने एक बहुत ही करीबी साथी हाँ हमारे अपने शरीर के बारे में बात करेंगे, लेकिन शायद एक ऐसे नजरिए से जिसे हमने पहले उतना सोचा ना हो।
बिल्कुल, आज हम गोता लगा रहे हैं समाजशास्त्री क्रिस शिलिंग की एक बहुत ही अहम किताब द बॉडी, उसके विचारों में। ये किताब असल में हमसे पूछती है, भई जो हमारा शरीर है ये सिर्फ हमारा है या इसमें समाज का भी कुछ हिस्सा है?
हाँ, और आजकल हम देखते हैं ना, लोग अपने शरीर को लेकर कितने कितने ज्यादा फिक्रमंद हो गए हैं।
बिल्कुल, फिटनेस है, डाइटिंग है, लुक्स पर इतना ध्यान, कॉस्मेटिक सर्जरी।
हाँ, ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर कभी ना खत्म होने वाला एक प्रोजेक्ट बन गया है।
सही कहा, एक प्रोजेक्ट, और इस पर लगातार कुछ न कुछ सुधार करते रहने का एक दबाव सा महसूस होता है।
तो ये किताब हमें यही समझने में मदद करती है कि इस दबाव के पीछे सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं। क्या ये बस हमारी अपनी पसंद है या कुछ और है इसके पीछे?
हाँ, इसी के तह तक जाने की कोशिश करते हैं आज।
चलिए तो फिर शुरू करते हैं लेखक से ही, क्रिस शिलिंग। ये नाम शायद सबके लिए जाना पहचाना न हो, पर समाजशास्त्र में इनका बड़ा नाम है।
जी हाँ, क्रिस शिलिंग ये ब्रिटेन के काफी जाने माने समाजशास्त्री हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ केंट में प्रोफेसर हैं, और खास तौर पर जो ये फील्ड है ना, शरीर का समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी ऑफ द बॉडी, उन्हें इसको स्थापित करने वाले शुरुआती और बहुत महत्वपूर्ण विचारकों में गिना जाता है।
अच्छा, तो इनकी खास बात क्या है, मतलब इनका नजरिया कैसे अलग है?
देखिए, जहां मेडिकल साइंस या बायोलॉजी शरीर को अक्सर एक तरह की मशीन, एक जैविक इकाई की तरह देखती है,
हाँ ठीक है,
शिलिंग कहते हैं कि शरीर इससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक रचना भी है।
सामाजिक रचना मतलब
ये कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति ये तय करते हैं कि हम अपने शरीर को कैसे देखते हैं, उसका क्या मतलब निकालते हैं, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं।
ये तो काफी दिलचस्प बात है कि शरीर सिर्फ नेचर की देन नहीं, समाज भी उसे शेप करता है।
बिल्कुल।
तो फिर उनकी ये जो किताब है द बॉडी, इसका मेन आइडिया, केंद्रीय विचार क्या है?
किताब का जो मूल विचार है ना, वो एक तरह से हमारी सदियों पुरानी सोच को चुनौती देता है।
कौन सी सोच?
वही कि मन अलग है और शरीर अलग, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म जिसे कहते हैं। शिलिंग कहते हैं कि ये सोच अधूरी है। शरीर सिर्फ हार्ड मास का ढांचा नहीं है, ये हमारे पूरे सामाजिक जीवन का, हमारी पहचान का केंद्र है। समाज इसे बनाता है और ये समाज को भी प्रभावित करता है।
अच्छा, पर शरीर प्राकृतिक तो है ही ना, जैसे भूख लगना, सोना, थकना, ये सब तो बायोलॉजिकल है।
हाँ हाँ बिल्कुल, शिलिंग इस जैविक सच्चाई को नकार नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन जैविक क्रियाओं को भी समाज एक शक्ल देता है। सोचिए ना, हमें कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना है, यहाँ तक कि दर्द को कैसे महसूस करना है या व्यक्त करना है, ये सब भी काफी हद तक हमारी संस्कृति हमें सिखाती है।
हाँ, ये बात तो है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो शिलिंग कहते हैं वो ये है कि आज के आधुनिक समाज में शरीर एक प्रोजेक्ट बन गया है।
हाँ, ये बॉडी प्रोजेक्ट वाली बात आपने शुरू में कही थी, इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये है कि अब हम अपने शरीर को ऐसे नहीं लेते कि भाई जैसा मिल गया वैसा है, नहीं, हम इस पर लगातार काम करते हैं।
जैसे?
जैसे जिम जाना, खास तरह की डाइट फॉलो करना, फैशन के हिसाब से कपड़े पहनना, लुक्स पर ध्यान देना, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में सोचना या करवाना, हम इसे लगातार सुधारना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं और दुनिया के सामने एक खास तरीके से पेश करना चाहते हैं।
तो ये हमारी पहचान बनाने का एक तरीका बन गया।
बिल्कुल, अब ये किस्मत की बात नहीं रही, ये एक काम बन गया है, एक तरह की जिम्मेदारी कि हमें अपने शरीर पर काम करना है।
तो ये किताब एक तरह से हमें ये समझाती है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है या जो समाज के नियम बदल रहे हैं और हमारी सोच, इन सब ने हमारे शरीर के साथ हमारे रिश्ते को कैसे बदल दिया है।
जी हाँ बिल्कुल, यही किताब का मकसद ही यही है कि समाज शास्त्र में शरीर के अध्ययन को एक महत्वपूर्ण जगह मिले और ये दिखाया जाए कि आज की जो शारीरिक संस्कृतियां हैं, मतलब फिटनेस का क्रेज या सुंदरता के जो नए नए पैमाने आ गए, वो हमारी जिंदगी और हमारी पहचान पर कितना गहरा असर डाल रही हैं।
चलिए, ये तो एक अच्छा ओवरव्यू मिला। अब जरा किताब के अंदर चलते हैं। आपने कहा कि जो पुराने क्लासिकल समाजशास्त्री थे उन्होंने शरीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
हाँ, शिलिंग इसी को अनुपस्थित शरीर कहते हैं। मतलब जो बड़े नाम है समाजशास्त्र के, जैसे कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कीम, मैक्स वेबर, उन्होंने समाज के बड़े ढांचों पर तो बहुत लिखा, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, नौकरशाही पर, लेकिन इस सब में एक व्यक्ति का जो शरीर है उसका क्या रोल है, इस पर उन्होंने सीधे तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कहा।
अच्छा, उनका ध्यान मतलब सामाजिक संरचनाओं पर ज्यादा था, व्यक्तिगत अनुभवों पर कम।
हाँ, मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं।
लेकिन क्या उनके काम में शरीर की कोई झलक नहीं मिलती बिल्कुल भी? कहीं इशारे भी नहीं?
नहीं, इशारे तो मिलते हैं और शिलिंग उन्हीं इशारों को पकड़ते हैं। जैसे मार्क्स ने दिखाया था कि कैसे पूंजीवाद में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का शरीर बस उत्पादन का एक साधन बन जाता है।
हाँ, मशीन के पुर्जे की तरह।
बिल्कुल, और वो मजदूर अपने ही शरीर से एक तरह से कट जाता है, एलियनेटेड महसूस करता है। या फिर दुर्खीम ने बताया कि कैसे जो धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान होते हैं उनमें शरीर कैसे सामूहिक भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम बनता है।
जैसे त्योहारों में साथ नाचना या किसी दुख में खास तरीके से बैठना या खड़े होना।
हाँ, बिल्कुल वही। और वेबर ने तर्कसंगतता या रैशनलाइजेशन के बढ़ने की बात की थी कि जैसे जैसे समाज ज्यादा नियमों वाला, ज्यादा व्यवस्थित होता गया, लोगों ने अपनी शारीरिक इच्छाओं और भावनाओं पर ज्यादा नियंत्रण करना सीखा।
तो इशारे तो थे मतलब ऐसे?
हाँ, संकेत थे, लेकिन शरीर कभी उनका मुख्य फोकस नहीं बना।
तो ये जो शरीर पर नियंत्रण की बात है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी था।
हाँ, एक तरह से देखें तो ये प्रक्रिया पुरानी है। शिलिंग यहाँ एक और समाजशास्त्री नॉबर्ट एलियास का जिक्र करते हैं। एलियास ने सभ्यता की प्रक्रिया, सिविलाइजिंग प्रोसेस को समझाया था। उन्होंने बताया कि कैसे यूरोप में धीरे धीरे सदियों के दौरान सामाजिक व्यवहार के नियम बने।
कैसे नियम?
कि भाई खाना कैसे खाना है, टेबल मैनर्स क्या है, कैसे छींकना है, अपनी भावनाओं को कैसे दिखाना है या छुपाना है। पहले समाज बाहर से दबाव डालता था, फिर धीरे धीरे लोगों ने खुद ही अपने ऊपर नियंत्रण करना सीख लिया। शर्म, झिझक जैसी भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गईं।
अच्छा, ये तो बाहरी नियंत्रण से आंतरिक आत्म अनुशासन की तरफ बढ़ने जैसा हुआ।
बिल्कुल।
और आज के दौर में ये नियंत्रण कैसे अलग है? क्या यही बॉडी प्रोजेक्ट से जुड़ता है?
हाँ, आज ये नियंत्रण बाहरी कम और अंदरूनी ज्यादा हो गया है। आज के समाज में, जैसा हमने कहा, शरीर हमारी पहचान का केंद्र बन गया है। ये एक रिफ्लेक्टिव प्रोजेक्ट है, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर हम सोच समझ कर, प्लान बनाकर काम करते हैं। शिलिंग प्लास्टिक बॉडीज की बात करते हैं, यानी ऐसे शरीर जिन्हें बदला जा सकता है, जैसे प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं।
किसके जरिए? फिटनेस, डाइट, सर्जरी?
हाँ, इन्हीं सब चीजों के जरिए हम लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने शरीर पर काम करते रहते हैं।
लेकिन इस प्रोजेक्ट में तो जोखिम भी बहुत है ना? बीमारियां हैं, एक्सीडेंट का डर है, पर्यावरण का असर है।
बिल्कुल, आधुनिक जीवन शरीर के लिए नए नए खतरे भी लाया है, और साथ ही इन खतरों से निपटने के लिए नए नए विशेषज्ञ भी आ गए हैं,
जैसे डॉक्टर, फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन।
हाँ, और यहीं पर विश्वास का सवाल उठता है। इतनी सारी जानकारी है, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, हम किस पर भरोसा करें? अपने शरीर के लिए सही फैसला कैसे लें? ये भी सिर्फ एक व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है।
अच्छा, शरीर का लिंग, जेंडर और कामुकता, सेक्सुअलिटी से क्या रिश्ता है इस नजरिए से?
ये बहुत ही गहरा रिश्ता है। शिलिंग बताते हैं कि जिसे हम मर्दानगी या नारित्व कहते हैं, वो सिर्फ विचारों या कपड़ों में नहीं होता, वो शारीरिक आदतों में, शरीर की बनावट में, और हम शरीर का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसमें भी दिखता है और बनाया जाता है।
जैसे?
जैसे पुरुषों का बॉडी बिल्डिंग करना, या एक खास तरह का पोस्चर रखना, या महिलाओं का कुछ खास तरह की ब्यूटी प्रैक्टिसेस से गुजरना। ये सब समाज में जेंडर को लेकर जो अपेक्षाएं हैं उन्हें दिखाता भी है और मजबूत भी करता है।
और जो नारीवादी सिद्धांत हैं या ट्रांसजेंडर अनुभव हैं, वो इस तस्वीर को और जटिल बनाते होंगे।
बिल्कुल, वो दिखाते हैं कि शरीर और पहचान कितने अलग अलग तरीकों से जुड़े हो सकते हैं, और ये कितना तरल भी हो सकता है। और फिर आता है उम्र का पढ़ना, बुढ़ापा और आखिर में मृत्यु। ये तो हमारे बॉडी प्रोजेक्ट के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती है।
निश्चित रूप से, ये वो सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर नश्वर है, उस पर हमारा नियंत्रण पूरी तरह से नहीं है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा।
और शायद इसीलिए एंटी एजिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। बिल्कुल, पूरा एंटी एजिंग उद्योग या समाज में मृत्यु के विषय पर बात करने से कतराना, ये सब दिखाता है कि हम शारीरिक कमजोरी, बुढ़ापे और मौत के विचार से कितना असहज महसूस करते हैं, कितना डरते हैं। हमारा बॉडी प्रोजेक्ट यहाँ आकर एक तरह से हार जाता है।
और भविष्य में टेक्नोलॉजी शरीर को कहाँ ले जा रही है, इस पर शिलिंग क्या कहते हैं?
ये किताब का एक और बहुत ही विचारोत्तेजक हिस्सा है। टेक्नोलॉजी जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या इंसान और मशीन का जुड़ना साइबोग, या फिर वर्चुअल रियलिटी,
ये सब टेक्नोलॉजी शरीर की जो पारंपरिक सीलाएं हैं उन्हें धुंधला कर रही हैं।
तो क्या इससे इंसान होने का मतलब ही बदल जाएगा?
ये एक बड़ा सवाल है जो शिलिंग उठाते हैं। वो कोई सीधा जवाब नहीं देते, पर वो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इन तकनीकी बदलावों के सामाजिक और नैतिक परिणाम क्या हो सकते हैं, मानव होने का क्या मतलब रह जाएगा।
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें जो शिलिंग की किताब द बॉडी से निकलती हैं, तो मुख्य विषय या संदेश क्या है?
देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि जिसे हम शरीर का प्राकृतिक रूप या काम समझते हैं ना, वो भी असल में काफी हद तक सामाजिक रूप से खड़ा हुआ है।
मतलब जिसे हम नॉर्मल या नेचुरल मानते हैं।
हाँ, हर समाज में, हर समय में सामान्य शरीर क्या है, स्वस्थ शरीर क्या है, सुंदर शरीर क्या है, इसकी परिभाषा बदलती रहती है। ये कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है।
भारत में ये देख लें, गोरेपन को लेकर जो ऑब्सेशन है वो इसका एक उदाहरण हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है, वो प्राकृतिक तो नहीं है ना, वो सामाजिक रूप से बनाया गया है।
अच्छा, और दूसरा मुख्य संदेश वही बॉडी प्रोजेक्ट वाला?
हाँ, कि आज के दौर में शरीर हमारी पहचान बनाने और उसे दुनिया को दिखाने का एक बहुत बड़ा मंच बन गया है। हम कैसे दिखते हैं, कितने फिट हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब दुनिया को सिग्नल देता है कि हम कौन हैं, हमारी वैल्यूज क्या हैं, हम कितने सफल या अनुशासित हैं, हमारी सामाजिक हैसियत क्या है।
चांद का प्रदर्शन बन गया है।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन इस प्रदर्शन में, इस प्रोजेक्ट में क्या सब लोग बराबर की स्थिति में हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तीसरा अहम बिंदु है, शरीर में छपी हुई सामाजिक असमानता। अमीरी गरीबी, जाति, लिंग, नस्ल, ये सब हमारे शरीर पर गहरा असर डालते हैं। जिन्हें बेहतर खाना मिलता है, सुरक्षित माहौल मिलता है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, उनका शरीर ज्यादा स्वस्थ रहता है, उनकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा होती है।
इसे शिलिंग शारीरिक पूंजी या बॉडली कैपिटल कहते हैं।
जी हाँ, जैसे आर्थिक पूंजी होती है, वैसे ही शरीर भी एक तरह की पूंजी है जो समाज में बराबर नहीं बटी हुई है। जिसके पास ज्यादा है उसे ज्यादा सामाजिक लाभ मिलते हैं।
और इसमें समाज की जो ताकतें हैं उनका भी हाथ होता है।
बिल्कुल, ये चौथा संदेश है जिस पर मिशेल फूको जैसे विचारक का काफी प्रभाव दिखता है, कि समाज की जो संस्थाएं हैं, स्कूल, दफ्तर, मीडिया, अस्पताल, ये जाने अनजाने में हमारे शरीर को अनुशासित करती हैं।
कैसे?
वो तय करती हैं कि कैसा शरीर अच्छा है, कैसा आदर्श है, कैसा प्रोफेशनल है, और हम इन मानकों को इतना अंदर तक उतार लेते हैं कि हम खुद ही अपने शरीर पर नजर रखने लगते हैं, उसे नियंत्रित करने लगते हैं।
जैसे पतला रहने का दबाव या ऑफिस में खास तरीके से उठने बैठने का अलिखित नियम।
हाँ बिल्कुल, ये बाहरी नियंत्रण से ज्यादा सूक्ष्म आत्म नियंत्रण बन जाता है।
और आखिरी मुख्य विषय, टेक्नोलॉजी का बढ़ता प्रभाव, जैसा आपने बताया।
हाँ, कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं कर रही है, वो शरीर को बढ़ाने, एनहांस की संभावनाएं भी खोल रही है। इससे प्राकृतिक और कृत्रिम के बीच की रेखा मिट रही है, और ये भविष्य के लिए बड़े नैतिक और सामाजिक सवाल खड़े करती है कि हम अपने शारीरिक सीमाओं के साथ कितना और किस हद तक जाना चाहते हैं।
किताब में यकीनन कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार होंगे जो खास तौर पर याद रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ बिल्कुल है, शिलिंग के कुछ कथन बहुत सटीक और गहरे हैं। जैसे उनका एक कहना है, शरीर एक ही समय में सबसे ठोस और सबसे आधुनिक चीज है।
ठोस और आधुनिक, ये तो विरोधाभासी लगता है।
हाँ, पर इसका मतलब है कि शरीर भौतिक है, हम उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो बिल्कुल ठोस है, लेकिन समाज में उसके मायने, उसकी परिभाषा, उसका महत्व लगातार बदलता रहता है, इसलिए वो हमेशा आधुनिक यानी कंटेम्प्रेरी भी है।
दिलचस्प। और बॉडी प्रोजेक्ट पर कोई खास कथन?
उनका ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से, आधुनिकता में शरीर एक रिफ्लेक्टिव प्रोजेक्ट बन गया है जिसे व्यक्ति की आत्म पहचान के हिस्से के रूप में पूरा किया जाना है।
यानी ये अब दिया हुआ भाग्य नहीं बल्कि एक काम है।
हाँ, एक काम, एक प्रोजेक्ट जिसे हमें अपनी पहचान बनाने के लिए, सेल्फ आइडेंटिटी के लिए लगातार करते रहना है।
और इसका समाज पे क्या असर पड़ा?
इस पर शिलिंग कहते हैं, हम एक दैहिक समाज में जी रहे हैं जहाँ शरीर सामाजिक पहचान और राजनीतिक कार्रवाई का आधार बन गया है।
दैहिक समाज
मतलब
मतलब ऐसा समाज जहां शरीर से जुड़े मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, सुंदरता, फिटनेस, बीमारी, विकलांगता ये अब सिर्फ निजी मामले नहीं रहे, ये सामाजिक बहस के, राजनीतिक आंदोलनों के और सरकारी नीतियों के केंद्र में आ गए हैं। सोचिए, हेल्थ पॉलिसी, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर बहस, विकलांगता अधिकार आंदोलन, ये सब इसके उदाहरण हैं।
हाँ, ये तो है। और वो प्लास्टिक बॉडीज और पहचान के लचीलेपन वाली बात।
हाँ, शिलिंग का एक और विचार है जो सोचने लायक है। प्लास्टिक शरीर और लचीले स्व साथ चलते हैं, जो आत्मनिर्माण के नए अवसर और नई चिंताएं पैदा करते हैं।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि शरीर को बदलने की जो क्षमता आज हमारे पास है, वो हमें अपनी पहचान को भी बदलने या उसे नए सिरे से गढ़ने का मौका देती है।
ये एक तरह की आजादी है, लचीलापन है, लेकिन इसके साथ ही लगातार खुद को बेहतर बनाने, बेहतर दिखने का दबाव और चिंता भी बढ़ती है। हमेशा अपर्याप्त महसूस करने का खतरा रहता है।
सही का? ये सारे विचार तो बहुत गहरे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? एक आम इंसान इन्हें कैसे समझे या इस्तेमाल करें?
नहीं, ये विचार अकेडमिक लग सकते हैं, पर इनका ताल्लुक हमारी रोज की जिंदगी से बहुत गहरा है। ये हमें अपने रोज के अनुभवों को, अपनी चिंताओं को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करते हैं।
जैसे?
कोई उदाहरण?
जैसे मान लीजिए हम अपनी सेहत को लेकर कोई फैसला कर रहे हैं, क्या खाएं, कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सा इलाज कराएं। शिलिंग के विचारों से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे ये फैसले सिर्फ मेडिकल फैक्ट्स पर आधारित नहीं होते, उन पर सामाजिक ट्रेंड्स का, विज्ञापनों का और आदर्श शरीर कैसा होना चाहिए इस धारणा का भी बहुत असर होता है।
हाँ, जैसे आजकल कोई खास तरह की डाइट बहुत पॉपुलर हो जाती है।
बिल्कुल, या कोई खास तरह का फिटनेस रूटीन। हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ये वाकई मेरे लिए सही है या मैं सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ।
और सोशल मीडिया का क्या? इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जो एकदम परफेक्ट बॉडीज दिखती है।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। शिलिंग के नजरिए से देखें तो सोशल मीडिया पर दिखने वाले ये शरीर अक्सर एक सामाजिक आदर्श का प्रदर्शन होते हैं, जिन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगी होती है और कई बार तो फिल्टर, एडिटिंग और लाइटिंग का भी कमाल होता है।
तो ये असलियत नहीं होती हमेशा?
ज्यादातर नहीं। ये समझना हमें उन तस्वीरों को ज्यादा आलोचनात्मक ढंग से देखने में मदद करता है और खुद पर उनके नकारात्मक असर को कम करने में भी। ये जानना कि ये परफेक्ट शरीर असल में एक सामाजिक रचना है, हमें अपनी तुलना करने की आदत से कुछ हद तक बचा सकता है।
काम की जगह पर ऑफिस कल्चर में भी इसका असर दिखता होगा।
जरूर दिखता है। सोचिए कि प्रोफेशनल दिखने का क्या मतलब होता है। अक्सर इसका मतलब होता है एक खास तरह का पहनावा, एक खास तरह की शारीरिक भाषा, एक खास तरह का वजन या फिटनेस लेवल। शिलिंग के विचार हमें ये सवाल पूछने में मदद करते हैं कि क्या ये मानक सबके लिए बराबर हैं, निष्पक्ष हैं, या कहीं ये अनजाने में किसी खास लिंग, उम्र, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे और दूसरों को पीछे तो नहीं धकेल रहे।
और शायद सबसे जरूरी बात जो इससे निकलती है वो खुद के शरीर को स्वीकारने की है, अपने प्रति थोड़ी दयालुता।
बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा टेक अवे हो सकता है, ये समझना कि शरीर को लेकर हमारी जो कई चिंताएं हैं, शर्म की भावना है या कमी महसूस होती है, वो अक्सर हमारी व्यक्तिगत असफलता नहीं है, बल्कि समाज द्वारा बनाए गए अवास्तविक या संकीर्ण मानकों का नतीजा है।
तो कमी हम में नहीं, उन मानकों में हो सकती है।
हाँ, ये एहसास बहुत राहत दे सकता है। इससे हम अपने शरीर के प्रति ज्यादा दयालु हो सकते हैं, उसकी इज्जत कर सकते हैं और बाहरी दबावों को बेहतर ढंग से समझकर उनका सामना कर सकते हैं।
तो इस पूरी चर्चा से अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपने शरीर को समाज से अलग करके देख ही नहीं सकते। हमारा शरीर सिर्फ हमारा निजी मामला नहीं है, ये उस समाज का आईना है जिसमें हम रहते हैं। ये दिखाता है कि हमारे समाज में क्या मूल्य हैं, ताकत कैसे काम करती है और असमानता कहाँ कहाँ है।
और जो चिंताएं हमें अपने शरीर को लेकर होती हैं, वजन, उम्र, सुंदरता, वो अक्सर सिर्फ हमारी व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हैं।
वो अक्सर बड़े सामाजिक रुझानों और दबावों का हिस्सा होती हैं, उनका प्रतिबिंब होती हैं। जब हम इसे समझते हैं तो शायद हम खुद को कम दोष दें और इन दबावों से निपटने के लिए ज्यादा स्वस्थ तरीके ढूंढ पाएं। हम समझ सकते हैं कि मीडिया या विज्ञापनों में सुंदरता या फिटनेस के जो पैमाने दिखाए जाते हैं वो असलियत से कितने अलग और कई बार कितने अमानवीय हो सकते हैं।
हाँ, और शिलिंग का काम हमें ये भी याद दिलाता है कि शारीरिक विविधता यानी अलग अलग तरह के शरीर कितने जरूरी और सामान्य है। हमें शायद एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जो हर तरह के शरीर का सम्मान करे, न कि कुछ गिने चुने संकीर्ण मानकों को ही आदर्श माने और बाकियों को कमतर समझे।
बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो ये चर्चा हमारे लिए छोड़ जाती है और शायद सभी सुनने वालों के लिए भी, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी हमारे शरीर की सीमाओं को बदल रही हैं, उसे बढ़ा रही है, क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब इंसान होने की हमारी परिभाषा ही बदल जाएगी? जेनेटिक एडिटिंग, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, आर्टिफिशियल अंग, ये सब हमें कहां ले जाएंगे?
या फिर क्या हमारी शारीरिक जरूरतें, हमारी भूख, हमारी नींद, हमारी थकान, हमारी बीमारियां और हमारी नश्वरता, क्या ये हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि तमाम तकनीकी तरक्की के बावजूद हम अंततः इसी धरती के, इसी प्रकृति के, इसी शरीर वाले जीव हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचते रहना होगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।